नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 14 वृंदावन लीलाओं का संपादन श्लोक क्रमांक 16। एदेक चैतन्येर कृपा महाबल तार अनुसंधान विना कराय सफल। एदेक चैतन्येर कृपा महाबल तार अनुसंधान विना कराय सफल। एदेक चैतन्येर कृपा महाबल तार अनुसंधान विना कराय सफल। Messages. शब्दार्थ ए यह देख जरा देखो चैतन्येरा श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा महाबल कृपा का महान बल तार अनुसंधान उसके बारे में पूछे विना बिना कराए वे करते हैं सफल सफल। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वह स्वतः कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममय सेवा करता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसको आध्यात्मिक खाते में लिख लिया जाता है और सही समय आने पर वह फलदायक होती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। नेहा विक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में कोई हानि या कमी नहीं है और इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयानक से भयानक भय से रक्षा कर सकती है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतित आत्माओं को भक्ति की संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन की सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है, और जो भी इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम की संस्तुति है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण भावनामृत के जिज्ञासु को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, तभी उसकी भक्ति शीघ्र सफल होगी। राजा प्रताप रुद्र के साथ यही हुआ। मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक थोड़े से ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु आश्वस्त हो जाएंगे कि वह व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए सुपात्र है। शुरू में महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का अवसर प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं थी, किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि वह राजा क्षुद्र झाड़ू देने वाले के रूप में भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहा है तो राजा पर महाप्रभु की कृपा निश्चित हो गई। जब महाराज प्रताप रुद्र वैष्णव के रूप में महाप्रभु की सेवा कर रहे थे तो महाप्रभु ने यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, प्रत्युत उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इंगित करना चाहते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र के प्रति महाप्रभु की कृपा के साथ किसी भी वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए वे देख अर्थात जरा देखो और चैतन्य कृपा महाबल, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती भी इसकी पुष्टि करते हैं, यत कारुण्य कटाक्ष वैभवथाम चैतन्य चंद्रामृत। आध्यात्मिक प्रगति में महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा बहुत बड़ी निधि बन जाती है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। जब श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा दयालुता का अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ जो किसी अन्य अवतार से यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, क्योंकि वे मुक्त हस्त से वह शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं दिया। श्री लोचनदास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुणा बहु दुई जाना निताय गौर चंद्र। निताय तथा गौर ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, व्रजेंद्र नंदन ये सचिसुत होइलो से बलराम होइलो नीताय दीनहीन यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तर साक्षी जगाई मधाय। पवित्र नाम का प्रचार करके इस युग के सभी पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। जगाए और मधाय उनकी सफलता के जीवंत उदाहरण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट मिशन है कलयुग में सारे पतित जीवों का उद्धार करना, कृष्ण भक्तों को भगवत धाम जाने योग्य बनने के लिए महाप्रभु की कृपा की निरंतर खोज करनी चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहम श्री गुरो श्रीयुता पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये गौर कथा शुरू करने से पहले हम यहाँ पर सभी वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद और कृपा की अभिलाषा करते हैं, जिसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी दिव्य लीलाओं पर कुछ चर्चा कर सकें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्तों को भगवत धाम जाने योग्य बनने के लिए महाप्रभु की कृपा की निरंतर खोज करनी चाहिए। तो हम सब महाप्रभु की कृपा की खोज में हैं और हम सब चाहते हैं कि हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, लेकिन किस प्रकार या योग्यता क्या है इस कृपा को प्राप्त करने के लिए, यह हम महाराज प्रताप रुद्र के जीवन से हम देखना चाहते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र को हालांकि शुरुआत में महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी कुछ योग्यताओं के वजह से, कुछ घटनाओं के वजह से उनके अंत में महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो मुख्यतर ऐसे सात कारण हैं कि क्यों महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। एक दिन श्री सार्वम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, मैं आपसे एक विनंती करना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, जो भी हो आप बोल सकते हैं। لیکن اگر یہ انکول ہے تو میں سویکار کروں گا، اگر انکول نہیں ہے تو میں سویکار نہیں کروں گا. سوام بٹاچاریہ کہتے ہیں ایک راجا ہے جن کا نام ہے پرتاپ رودر رائے، اور وہ آپ کا درشن کے لیے بہت ہی آتر ہیں، کرپیا کر کے ان کو درشن دیجیے. جیسے ہی شری چیتنیا مہاپربھو اس بات کو سنتے ہیں اپنے دونوں کانوں کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پریہ سارباؤم کس پرکار کا وننتی کر رہے ہو؟ میں تو ایک ویراگی ہوں، ایک سنیاسی ہوں، میں کیسے ایک راجا سے مل سکتا ہوں؟ ایک سنیاسی کے لیے یہ تو ایک استری سے ملنا یا ایک وش پینے کے برابر ہے. اور پھر شری چیتنیہ مہاپربھو بہت ہی پرسدھ شلوک گاتے ہیں، نشکنچنسیہ بھگوت بھجنونمکھسیہ پارم پرم جگمشور بھوساگرسیہ سندرشنام وشینام متھیوشتام چ ہا ہنت ہنت وش بخشن توپیہ سادھو. مہاپربھو کہتے ہیں نشکنچنسیہ، جو نشکنچن ہیں، جو ویراگی ہیں، بھگوت بھجنون مکسیا، اگر انہیں بھکتی کرنی ہے، بھگوان کی بھکتی کرنی ہے، اور پارم پرم جگمشور بھو ساگرسیا، اس بھو ساگر کو پار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے ویکتی کو سندرشنام درشن کرنا، کس کا؟ وشئی نام، جو وشئی ویکتی ہیں، اتھا یوشتام، اتھوا جو استری مطلب پروش یا استری جو اندیہ تپتی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ویکتیوں کا درشن کس پرکار ہے؟ ہاں ہنت ہنت، ہائے ہائے، یہ تو وش بخشن، تو یہ تو وش پینے کے برابر ہیں. تو اس پرکار مہاپربھو کہتے ہیں. اور آگے جائے شش گونتا کی جائے شش راس، اور آگے کہتے ہیں کہ ہے سارباؤم اگر پناہ اس پرکار کا ونتی کریں گے تو کبھی بھی میرا درشن نہیں ہو پائے گا تمہیں. تو یہ سن کر سام بٹاچاریہ بہت ہی بھیبھیت ہو جاتے ہیں اور واپس گھر لوٹ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد مہاراج پرتاپ رودر اپنے منتری گن سینک سبھی کے ساتھ جگنات پوری آتے ہیں، اور وہاں پر تو رامانند رائے بھی ساتھ میں آتے ہیں مہاراج پرتاپ رودر کے ساتھ. تو رامانند رائے اس سمے مدراس کا گورنر تھے. تو رامانند رائے جگنات پوری پہنچتے ہی شری چیتنیہ مہاپربھو کو ملنے جاتے ہیں، اور وہاں پر رامانند رائے شری چیتنیہ مہاپربھو سے کہتے ہیں ہے بھگوان آپ نے مجھے آدیش دیا تھا اس سرکاری نوکری کو چھوڑ کر پوری سمے بھکتی میں لگے، اور یہ آپ کا جو آدیش ہے میں نے شری مہاراج پرتاپ رودر کے سمکش میں نے رکھ دیا. اور رامانند رائے کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ ونتی مہاراج پرتاپ رودر کے سمکش رکھ دیا تو مہاراج پرتاپ رودر بہت ہی پرسن ہوئے، اور آپ کا نام سن کر ہی مہاراج پرتاپ رودر پوری طرح سے بھاو وبھور ہو گئے، اور میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے شری مہاراج پرتاپ رودر نے کہا ہے رامانند آپ تو کتنے بھاگیشالی ہو کہ آپ سب کچھ تیاگ کر شری چیتنیہ مہاپربھو کی سیوا کرنا چاہتے ہو. میں بھگوان شری چیتنیہ مہاپربھو کا درشن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اتنا بھاگیشالی نہیں ہوں، میں تو ادھم پتیت ویکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اگلے جنم میں مجھے یہ اوسر پراپت ہوگا مہاپربھو کا درشن کے لیے. और इस प्रकार कहते हुए महाराज प्रताप रुद्र ने कहा कि अवश्य तुम सब इस सरकारी नौकरी को त्याग कर अवश्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग सकते हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पूरा पेंशन जो है पूरा सैलरी मिलेगा। तो देखिए महाराज प्रताप रुद्र इतने प्रसन्न हुए कि जो पूरा सैलरी जो है वो पेंशन के रूप में देने के लिए तैयार हुए। आजकल ऐसा कौन मालिक है जो जब कोई व्यक्ति वीआरएस लेता है वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस तो उसको पेंशन के रूप में पूरा पगार मिलता है, ऐसा कौन है। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र इतने प्रसन्न हुए देने के लिए तैयार हुए और इतना ही नहीं रामनंद राय कहते हैं महाप्रभु से कि वास्तव में जितना प्रेम महाराज प्रताप रुद्र का है आपके लिए उतना प्रेम मुझ में नहीं है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे रामनंद राय तुम तो महान भक्त हो, महान भक्त, और इसलिए जो भी व्यक्ति तुम्हें प्रेम करता है अवश्य उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार यह पहला कारण है कि क्यों महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का भक्त रामानंद राय को प्रसन्न किया। तो भक्तों को प्रसन्न करना या भक्तों की कृपा प्राप्त करना यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्तों की कृपा प्राप्त किए बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो वहां पर उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक अंग्रेजी कहावत कोट करते हैं, लव मी लव माई डॉग। तो अगर मुझे प्रेम दिखाना है तो सबसे पहले मेरे कुत्ते को प्रेम दिखाओ। तो श्रील प्रभुपाद उस समय जो पाश्चात्य देश के लोगों के लिए और जो भारतीय लोग जो पाश्चात्य देश को नकल करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाश्चात्य देश में कुत्तों को बहुत प्रेम दिखाया जाता है। तो कुत्तों के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, तो कुत्तों के लिए ब्यूटी पार्लर, नर्सिंग होम, कुत्तों के लिए स्पेशल खाना, सब कुछ है कुत्तों के लिए। हाँ, रेस्टोरेंट होटल भी। तो जो कुत्ते उस प्रकार के वातावरण में जन्म लेते हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो अगर कुत्ते को प्रेम दिखाया जाता है तो मालिक है बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो अगर डायरेक्टली मालिक को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए तो शायद मालिक उतना प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन अगर कुत्ता प्रसन्न होता है तो जरूर मालिक प्रसन्न होगा। और वही चीज हमारे आचार्यगण भी बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो कुकुर, मैं तो केवल एक कुत्ता हूं भगवान के लिए। भगवान ठाकुर हैं, भगवान मालिक हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं तो केवल एक कुत्ता हूं। तो वैष्णव भी कुत्ता बनना चाहते हैं, लेकिन यहां पर मुख्य पॉइंट यह है कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करने ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर महाराज प्रताप रुद्र ने क्योंकि रामानंद राय को प्रसन्न किए तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए। और श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं आदि पुराण से ये श्लोक कोट करते हैं जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्त है। तो ये सिद्धांत है कि भगवान डायरेक्टली कभी भी किसी को कृपा नहीं करते हैं, उनके भक्तों के माध्यम से ही जाना पड़ता है। हाँ। तो जिस प्रकार जो फैक्ट्री वाले हैं वो अगर डायरेक्टली फैक्ट्री के पास जाएंगे तो शायद नहीं मिल सकता है जो भी है, लेकिन जो रिटेल दुकान से प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि केवल भक्तों के द्वारा ही मेरी कृपा प्राप्त होगी। उसी प्रकार भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, आराधनाम सर्वेषां विष्णुर आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो विष्णु की आराधना ये परम आराधना है, लेकिन उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा तदीयानाम या भक्तों की आराधना वो बेहतर है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर महाराज प्रताप रुद्र दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जब भक्तगण प्रसन्न होते हैं तभी भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट है कि किस प्रकार भक्तों को प्रसन्न करने से महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये आश्वासन देते हैं रामानंद राय को कि क्योंकि महाराज प्रताप रुद्र ने तुम्हें प्रसन्न किया है तो इसलिए उन्हें अवश्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो जब महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी आते हैं तो सारम भट्टाचार्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने मेरी विनंती श्री चैतन्य महाप्रभु को बताए। सारम भट्टाचार्य कहते हैं, हां मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से इनकार कर दिया। यह सुनकर महाराज प्रताप रुद्र दुखी हुए और फिर कहें, महाराज प्रताप रुद्र ने कहा कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का यह दृढ़ संकल्प है कि वो मुझे कृपा नहीं करेंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मैं अभी यह दृढ़ संकल्प करता हूं कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। इस देह, इस राज्य कि वह राज्य कि वह देह सब अकारण, यह राज्य यह देह सब अकारण है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है तो ये सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है मेरे जीवन में। इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं और आगे कहते हैं कि ऐसे लगता है कि श्री गौरंग महाप्रभु सभी पापी जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, केवल एक जीव को छोड़कर, वो है महाराज प्रताप रुद्र। जैसे यहां पर श्री प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो जगाए मधाए ऐसे अधम जीवों का भी उद्धार किए, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, अभागी हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन भी नहीं देना चाहते हैं। और अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तो मैं इस देह का अंत करने वाला हूं, इस देह का कोई मतलब नहीं है। श्री प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि यह दृढ़ता जो है यह दूसरा कारण है कि क्यों महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। यह दृढ़ संकल्प, जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो दृढ़ व्रत है, ये दृढ़ता जो है, ये जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हालांकि महाराज प्रताप रुद्र राजा है, ऐश्वर्यवान जीवन जी सकते थे, क्या कमी थी उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि महाप्रभु की कृपा के बिना यह जीवन, यह राज्य, यह ऐश्वर्य सब कुछ व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार सोचने वाले हैं? लोग सोचते हैं कि बस मेरे पास ऐश्वर्य है, धन है, तो वो सब कुछ है, भगवान तो बैकग्राउंड में है। लेकिन यहां पर महाराज प्रताप रुद्र एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार अगर भगवान की कृपा न हो तो वास्तव में इस मनुष्य का, मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो धन है या जो ऐश्वर्य है वो तो सब नश्वर है, इस जीवन के साथ सब कुछ नाश होने वाला है, लेकिन एकमात्र चीज वो शाश्वत चीज है, वो है भगवान की कृपा, वो एकमात्र चीज है जो शाश्वत है। तो इसलिए यहां पर श्री प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं भगवद्गीता से, नेहा विक्रमो नाश्यस्ति प्रतिभायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्। ये एकमात्र चीज है वो शाश्वत है, वो है भगवान की कृपा, और इसके बिना इस मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये महाराज प्रताप रुद्र दिखा रहे हैं अपने जीवन से, और ये दृढ़ता जो है ये आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चातक पक्षी का। तो जिस प्रकार चातक पक्षी वो दृढ़ संकल्प लेता है कि मुझे केवल शुद्ध पानी चाहिए बादल से, हालांकि बहुत सारे नदी सरोवर हैं पानी मिलने के लिए, लेकिन केवल वो शुद्ध पानी, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार यहां पर महाराज प्रताप रुद्र की दृढ़ता से अंततः उसको, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और इस दृढ़ता को देखकर सार्वम भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, और सार्वम भट्टाचार्य कहते हैं हे राजन, इस दृढ़ता के वजह से जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। और फिर सार्वम भट्टाचार्य उनको मार्ग बताते हैं कि वो किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीसरा कारण है, सार्वम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे, तो गुरु को प्रसन्न करना ये बहुत आवश्यक है, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो गुरु मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो सार्वम भट्टाचार्य अभी महाराज प्रताप रुद्र को मार्ग दिखाते हैं कि किस प्रकार वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और बताते हैं कि आगे कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होगी, और उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा बगीचे में आराम करेंगे, लेट जाएंगे, तभी वहां पर जाना, उनके पैर दबाना, और जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के रासलीला के ऊपर 5 अध्याय उन श्लोकों का उच्चारण करो, और तभी श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर आप पर कृपा करेंगे। इस प्रकार सार्वम भट्टाचार्य मार्ग दिखाते हैं वो कृपा प्राप्त करने के लिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुटोपि। तो जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, आचार्यगण प्रसन्न नहीं होते हैं, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक भगवान की कृपा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली बात यह है कि महाराज प्रताप रुद्र को पूरी श्रद्धा थी सार्वम भट्टाचार्य के ऊपर। सार्वम भट्टाचार्य ने उनको बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, और इस बात पर पूरी विश्वास थी महाराज प्रताप रुद्र को। तो इसलिए यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कतिथि अर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार भगवान के ऊपर श्रद्धा है उसी प्रकार जब गुरु के ऊपर श्रद्धा होती है तब दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है हृदय में। तो ये तीसरा कारण है गुरु को प्रसन्न करना। तो महाराज प्रताप रुद्र ने अपने गुरु सारंग भट्टाचार्य को प्रसन्न किए अपनी दृढ़ता से, कुछ दिखावे से नहीं। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम केवल जब गुरु आते हैं तब उनके समक्ष हम दिखाएंगे कि हम कितना भक्ति कर रहे हैं, जब गुरु जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन उस प्रकार नहीं, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ जब हर समय जब वैष्णव और गुरु को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता है व्यक्ति, तभी उस प्रयास से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो सारंग भट्टाचार्य इस प्रकार आश्वासन देकर चले जाते हैं और महाराज प्रताप रुद्र इस आश्वासन को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से लौट आते हैं, फिर से महाराज प्रताप रुद्र सारंग भट्टाचार्य को एक पत्र लिखते हैं कि क्या श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन देने वाले हैं। सारंग भट्टाचार्य कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। और तभी महाराज प्रताप रुद्र पत्र लिखते हैं कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं इस राज्य का त्याग करूंगा और एक भिक्षुक के समान घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा। और तभी वो सभी वैष्णवों से विनंती करते हैं कि कृपया करके जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को विनंती कीजिए, वो आपकी बात सुनेंगे। तो देखिए वैष्णव जब वो देखते हैं कि कोई अन्य भक्त भगवान की कृपा के लिए बहुत ही आतुर है, लौल्यम है, तो सभी वैष्णवगण प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार इस भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो सभी वैष्णवों का मीटिंग हुआ, इष्टगोष्ठी हुई। लेकिन ये इष्टगोष्ठी का उद्देश्य वो है किस प्रकार भक्त भक्ति में प्रगति करें, किस प्रकार भक्त किसी और भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त हो इसके लिए, क्योंकि अंततः वही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो हमारे जितने भी मीटिंग होते हैं, इष्टगोष्ठी होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य वही होना चाहिए कि किस प्रकार हम सभी लोग मिलकर भगवान की कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें, वही महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी प्रकार के मीटिंग का, वही मुख्य उद्देश्य है। तो यहां पर भक्त लोग मीटिंग करते हैं और सोचने लगते हैं किस प्रकार क्या किया जाए महाराज प्रताप रुद्र को भगवान की कृपा मिलने के लिए। और उस मीटिंग का निष्कर्ष यह निकला, उन्होंने सोचा कि अगर हम फिर से विनंती करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहां से चले जाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली विनंती नहीं करेंगे, हम केवल राजा का गुणगान करेंगे, राजा के जो अच्छे गुण है उसके बारे में बताएंगे, उतना ही करेंगे। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु जाते हैं अन्य भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और वहां पर जाकर महाप्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं आप सब आए हैं कुछ बताने के लिए, तो क्यों इस प्रकार चुप क्यों हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जरूर हम कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हम डर रहे हैं बताने के लिए। महाप्रभु कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, जो भी हो बताओ क्या है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाराज प्रताप रुद्र वो आपके शुद्ध भक्त हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया करके आपके चरण कमलों का दर्शन दीजिए उनको, नहीं तो राजा अपने राज्य को त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनकर कहते हैं यह तो संभव नहीं है, क्योंकि वो एक राजा है, राजा का पदवी है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति तो दूर की बात है, लेकिन अन्य लोग क्या कहेंगे, निंदा करेंगे। और यहां पर ये जो दामोदर पंडित जो है वो तो केवल निंदा ही नहीं करेंगे लेकिन डांटेंगे। अगर दामोदर पंडित मुझे इजाजत देते हैं तो मैं राजा को मिलने के लिए मैं तैयार हूं। तो दामोदर पंडित कहने लगते हैं हे भगवान, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैं कौन हूं आपको आदेश देने के लिए, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं और अवश्य ही आप राजा को मिलेंगे ही। तो इस प्रकार जब दामोदर पंडित कहते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लेकिन फिर भी मैं एक सन्यासी हूं, लोग निंदा करेंगे इसलिए मैं नहीं मिल सकता हूं। तो नित्यानंद प्रभु और एक प्लान बनाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम आपका जो एक वस्त्र दीजिए, इस वस्त्र को पाकर महाराज प्रताप रुद्र संतुष्ट हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप तो सब विद्वान लोग हैं, जो आप चाहते हैं वो करो। तो सारम भट्टाचार्य रामनंद राय इस गोविंद से महाप्रभु का एक पुराना वस्त्र लेकर सारम भट्टाचार्य को देते हैं और सारम भट्टाचार्य उस वस्त्र को लेकर राजा को देते हैं। अभी यह चौथा पॉइंट है, जब महाराज प्रताप रुद्र को उस वस्त्र प्राप्त होता है, वो वस्त्र प्राप्त होता है, तो महाराज प्रताप रुद्र ऐसे नहीं सोचते हैं कि मैं ये चाह रहा था कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, ये वस्त्र से क्या मिलने वाला है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन बल्कि महाराज प्रताप रुद्र कृतज्ञ थे, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ उस वस्त्र को स्वीकार किए और उस वस्त्र को लेकर अपने घर में ऑल्टर पर रख दिए और ऑल्टर पर भगवान के समान ही उस वस्त्र को पूजने लगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर, कृतज्ञता, कृतज्ञता है, थोड़ी सी कृपा प्राप्त हुई वस्त्र के रूप में, लेकिन उस कृपा के लिए कृतज्ञ थे राजा। और ये कृतज्ञता जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि भक्त कह रहे थे इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल। तो जो कृतज्ञ नहीं है वो वास्तव में मूर्ख है। तो हम प्रभुपाद की कृपा से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितनी सारी कृपा है हमारे पास, भक्तों का संग, महाप्रसाद, कृष्ण कथा, क्या नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम कृतज्ञ हैं या नहीं। अगर कृतज्ञ हैं तो उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए हम जरूर प्रभुपाद जी के इस मिशन में, मूवमेंट में पूरी तरह से उत्साह के साथ सेवा करेंगे। ये कृतज्ञता को प्रकट करने का तरीका है। कोई भी कह सकता है कि मैं कृतज्ञ हूं, लेकिन कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए तरीका है सेवा करना जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र यहां पर कृतज्ञ थे उस थोड़ी सी कृपा के लिए। बाद में जब राजा रामानंद राय से विनंती करते हैं, कृपया करके एक मीटिंग अरेंज कीजिए महाराज प्रताप श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो रामानंद राय प्रयास करते हैं और फिर से महाप्रभु इनकार करते हैं। महाप्रभु कहते हैं सन्यासी र अल्प चिद्र सर्वलोक घाय, अगर सन्यासी के चरित्र में थोड़ी सी गलती भी हो तो सब लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन महाप्रभु कहते हैं लेकिन मैं महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र से मिलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पुत्र भी पिता का ही एक अंश है या एक विस्तार रूप है पिता का, तो इसलिए पुत्र को भेज सकते हो। तो रामानंद राय जो महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को लाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, और ये नवयुवक पुत्र बहुत ही सुंदर कृष्ण के समान दिख रहे थे। तो पीतांबर वस्त्र पहने हुए जब ये बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का स्मरण हुआ और बहुत ही प्रसन्न होकर इस लड़के को श्री चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं। और जैसे ही आलिंगन करते हैं इस लड़के में सभी प्रकार के लक्षण भाव विभोर हो जाते हैं, सभी प्रकार के अष्ट विकार के लक्षण प्रकट होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनसे कि हर रोज यहां आकर मुझसे मिलना, और इस प्रकार शुद्ध कृष्ण प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु इस बालक पर बरसाते हैं। इसका कोई कारण नहीं था, यह है अहैतुकी कृपा। हालांकि इस लड़के का एक दृष्टिकोण से कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी अहैतुकी कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु इस लड़के पर बरसाते हैं। और जब ये पुत्र वापस घर लौट जाता है तो महाराज प्रताप रुद्र उनको आलिंगन करके वही जो कृष्ण प्रेम है उस कृष्ण प्रेम का अनुभव करते हैं। तो यह है पांचवा कारण, यह है अहेतुकी कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा तो उसके लिए कुछ कारण नहीं है, वो अहेतुकी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर महाराज प्रताप रुद्र पर अहेतुकी कृपा दिखाते हैं अपने पुत्र के माध्यम से। आगे कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, और वो रथ यात्रा शुरू होने से पहले वहां पर महाराज प्रताप रुद्र आते हैं और झाड़ू लेकर झाड़ू मारते हैं भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और यह देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और यह है छठा कारण, और यह है नम्रता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र हालांकि बड़े राजा हैं लेकिन बहुत ही नम्र होकर सेवा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के लिए, इस दृश्य को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है, कोमल हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सुधारी। तो भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए नम्रता यह पहली सीढ़ी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं यह पहली सीढ़ी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर नम्रता नहीं है तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मिथ्या अहंकार से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। जो व्यक्ति स्वयं को पतित समझता है वास्तव में वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित कर सकता है। तो ये है छठा कारण। और फिर बाद में जब रथ यात्रा के बीच में जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा बगीचे में जाकर वहां पर लेट जाते हैं। तो सार भट्टाचार्य के आदेश लेकर, उनके आदेश के अनुसार वहां पर महाराज प्रताप रुद्र जाते हैं। सबसे पहले वो सभी वैष्णवों से, सभी वैष्णवों को दंडवत करते हैं, विनंती करते हैं, कृपा की याचना करते हैं, और फिर सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करके फिर उनके पैर को दबाते हैं। और दबाते हुए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के श्लोक का उच्चारण करने लगते हैं। और जैसे ही महाराज प्रताप रुद्र तव कथामृतम तप्त जीवनम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भाव विभोर होकर उठ जाते हैं और तुरंत राजा को आलिंगन करते हैं। और आलिंगन करते हुए दोनों राजा और श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू बहने लगते हैं नदी के समान। और श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो? वास्तव में तुमने मुझे अमूल्य चीज प्रदान की है, कृष्ण कथा की अमूल्य चीज, अमूल्य रत्न प्रदान की है। और भूरिदा भूरिदा कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं। और राजा अब क्या कहते हैं? राजा यह नहीं कहते हैं कि मैं राजा हूं, मैं महाराज प्रताप रुद्र हूं, ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तव में ये गलत पहचान है। क्योंकि व्यक्ति केवल शारीरिक अवस्था में, बद अवस्था में ये पोस्ट पोजीशन इत्यादि के साथ गलत पहचान कर लेता है, ये मिथ्या अहंकार का परिणाम है। लेकिन वास्तव में जीव तो केवल कृष्ण का दास है। तो राजा कहते हैं, आमी तुमार दासेर अनुदास वृत्तियर वृत्य करी ए मोरा आश। कहते हैं कि मैं तो केवल आपके दासों का दास हूं और मैं आशा करता हूं वृत्तियर वृत्य करी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस प्रकार दासों के दास के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार राजा कहते हैं। तो इस प्रकार जब महाराज प्रताप रुद्र अपना पहचान बताते हैं, इससे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। और ये सातवां कारण है, और वो है गोपीर मर्तुर पद कमलेर दास दास अनुदास। तो ये दासत्व की पदवी या सेवा भाव जो है, एक दास के रूप में सेवा भाव, ये महत्वपूर्ण कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करने के लिए। और इस प्रकार अन्य वैष्णव जब वो देखते हैं कि अंततः महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। क्योंकि वैष्णव में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती। जब वो देखते हैं कि अन्य भक्तों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये सात कारण है कि क्यों महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। और जब हमें भी चाहते हैं और जरूर चाहते हैं कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, तो महाराज प्रताप रुद्र के पद चिन्हों पर चलते हुए अगर हम उसी प्रकार प्रयास करेंगे, उसी प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ, तो इस गौर पूर्णिमा के अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि किस प्रकार हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करें, किस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करें। तो इस प्रकार यहां पर अंततः महाराज प्रताप रुद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरंग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, समवेद गौर भक्त वृंद की, नदाय गौर प्रेमानंदे।